Market Hunter. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gauran Dhawan Lal with my co-anchor Ambarish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे, साथ ही प्रमुख समाचारों पर हम चर्चा भी करेंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आप दोनों के साथ साथ सभी सुनने वालों को भी नमस्कार।
और अब हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल।
थैंक यू अम्बरीश एंड सिद्धार्थ, वंस अगेन वेलकम टू मार्केट मंत्रा। A quick look at the headlines. Upward momentum continues in stock market. Sensex rises by 444 points. Nifty closes at 24,751. Barring Japan's Nikkei, most other Asian markets close with gains. And oil prices edge higher after falling in the previous session.
घरेलू शेयर बाजारों में कल शुरू हो रही तेजी का दौर आज भी जारी रहा। सेंसेक्स 444 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,751 अंकों पर बंद हुआ। जापान के निकेई को छोड़कर एशिया के अधिकांश शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए और कच्चे तेल के मूल्यों में कल की गिरावट के बाद आज तेजी दिखाई दी। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में कल शुरू हुई तेजी का दौर आज भी जारी रहा। एशिया के प्रमुख बाजारों में बढ़त का असर देश के बाजारों पर भी पड़ा और व्यापक तौर पर उछाल दर्ज किया गया। 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 444 अंक यानी 0.55% बढ़कर 81,442 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बाजार बंद होने के समय 131 अंक यानी 0.53% की बढ़त के साथ 24,751 अंकों पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार में भी तेजी का माहौल रहा। मिडकैप सूचकांक 0.39% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.65% की बढ़त के साथ बंद हुआ।
Let's take a slightly more detailed look at what happened in the stock market today. Benchmark domestic equity indices continued their upward momentum today, extending gains from the previous session, boosted by a broad-based rally and mirroring gains in major Asian markets. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, the Sensex, rose 0.55% or 444 points to settle at 81,442. And the National Stock Exchange's Nifty 50 climbed 131 points or 0.53% to end at 24,751. The broader market indices mirrored gains in benchmark indices. The mid-cap index rose 0.39%, while the small-cap index closed with a 0.65% gain. In the Sensex Index, 18 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Eternal rose 4.5%, Power Grid gained 1.96%, ICICI Bank added 1.65%, and Reliance climbed 1.37%. Conversely, IndusInd Bank lost 1.41%, Axis Bank slipped 1.06%, Bajaj Financial Services shed 0.63%, and Bajaj Finance lost 0.57%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors closed in green territory. Realty added 1.79%, services rose 1.09%, and healthcare added 0.88%. On the other side, auto sector shed 0.05% and oil and gas slipped 0.02%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,257 companies advanced, shares of 1,725 companies declined, while shares of 147 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 72 companies hit their 52-week high, while 21 hit their 52-week low.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 85.79 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक आज दिन के कारोबार में 98.77 के करीब था। सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह की आज शेयर बाजार में बढ़त दिखाई दी और कल की बढ़त को आगे जारी रखा बाजार ने, तो इतनी जो ग्लोबल लेवल पे और जितनी अनिश्चितताएं हैं उसके बीच में क्या लगता है कि बाजार ने सबको डिस्काउंट कर दिया या ये एक टेम्परेरी फेज आपको दिखता है?
नहीं अमरीश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग्लोबल लेवल पे जरूर अनिश्चितता है, लेकिन जहां तक अगर आप अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पूरी तरह से स्थिरता है। और जो पिछले हफ्ते जीडीपी का जो आंकड़ा आया, तो एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है। 6.5% के दर से हमने जो है पिछला साल पूरा किया है 24-25, और इस साल भी ऐसा अनुमान है कि कम से कम 6.5% हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो रहेगी ही। और जहां तक उसमें ध्यान देने वाली बात है, जब हमने ये साल शुरू किया था उस समय आम चुनाव की भी घोषणा हुई थी, तो पहले दो जो क्वार्टर्स थे वो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि उतनी जो है सरकार की तरफ से भी उतनी स्पेंडिंग नहीं हो पाई थी। तो और जनरली चुनाव के बीच में ये होता है कि एक थोड़ा सा अनिश्चितता रहती है, लोगों के मन में रहता है कौन सी सरकार आएगी क्या आएगी। तो लेकिन जब सरकार वापस नरेंद्र मोदी जी लौटे तो एक बात क्लियर थी कि डायरेक्शन वही रहेगा, रिफॉर्म्स का डायरेक्शन रहेगा। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिस या मैन्युफैक्चरिंग को जो बढ़ावा, तो इस तरह की पॉलिसीज का एक बात ये क्लियर था कि स्टेबल रहेंगी। और जहां तक जब हमने देखा कि इस साल के मिड में करीब अक्टूबर में जब FII की सेलिंग आई और उसके बाद ट्रंप साहब ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर जब से कार्यभार संभाला है, तब से जरूर एक अनिश्चितता बाजार में थी, FIIs की सेलिंग थी। लेकिन मुझे लगता है अब उस दौर से हम लोग निकल चुके हैं। और जहां तक ट्रंप साहब का भी जो टैरिफ को लेके इश्यूज थे, और नए नए इश्यूज खैर अभी रोज आ रहे हैं, अभी स्टील पे ड्यूटी लगा दी है उन्होंने जो इम्पोर्ट हो रही है स्टील अमेरिका में, तो मुझे लगता है वो एक सर्टेन लेवल तक जो उसका इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है। और अब एक ये भी इस तरह की भी खबर है कि हमारी एक ट्रेड डील जल्द उनके साथ हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक तक या जून तक हो जाए। तो मुझे लगता है अब बाजार में, और इस हफ्ते एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है, मुझे लगता है कि कल RBI की पॉलिसी है, तो उसमें भी ये इस बात की भारी संभावना है कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स के से भी ज्यादा रेपो रेट में कट हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं
इसका मतलब है कल बाजार और हम उम्मीद करें और ज्यादा उछाल मारेगा।
हाँ, मतलब क्योंकि ये भी एक और ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला बड़ा स्टेप होगा।
So, you know, these are particular prices and we're looking at, we know it's volatile, but it's range bound and we're seeing those ups and downs in our stock market. But Siddharth, please help us understand that, you know, somewhere when Trump tariffs were coming in, there was a lot of reaction from countries across the world. India stand, and I know some were happy, some were not happy with it. We were by and large not reactive. I think there was a response. We were measured in our response. We said, and I think somewhere that is indicative of internal strength and stability within the country. You know, not just being trigger happy in your responses. You think that has also helped us?
Yes, obviously. I think, Gaurav, as you rightly said, because why we were also not reactive, but because we also have we are also a big trading partner. As far as US is concerned, it is one of our biggest trading partner. We have a surplus of almost $50 billion with US. So I think, and you're not gaining anything in being reactive. So I think we took a very, very practical approach, and we went over to them. You know, and I think currently we are engaged, and that was the reason also that he also put a stop on the tariffs for the 90 day इमीडिएट पॉज वॉज देयर फ्रॉम मिस्टर ट्रंप एंड ऑब्वियसली नाउ वी आर ऑब्वियसली देर इज अ 10% टैरिफ ऑन अस एक्स्ट्रा टैरिफ बट आई थिंक नाउ एज वी आर गेटिंग द इंडिकेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन साइड एंड आई थिंक वेरी सून एन अमेरिकन डेलीगेशन इज हेयर सो आई थिंक वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ निगोशिएटिंग अ बायलैटरल ट्रेड डील विच वुड बी द फर्स्ट कट वुड नॉट बी द लास्ट द फाइनल निगोशिएशन दैट वी रीच विद देम बट आई थिंक येस दैट ऑल्सो हैज अ मेजर्ड इम्पैक्ट प्लस आर ओन स्ट्रॉन्ग इंटरनल फंडामेंटल्स इफ यू लुक एट आर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल वेदर यू लुक एट एग्रीकल्चर सेक्टर वेदर यू लुक एट कंस्ट्रक्शन विच हैज डन रिमार्क बोथ द सेक्टर्स हैव डन रिमार्केबली वेल एंड ऑल्सो दे गिव इनहेरेंट स्ट्रेंथ टू द इंडियन इकोनॉमी वी हैव एबंडेंट फूड ग्रेन स्टॉक्स Plus inflation is at almost, I think, 6-year low. So there are so many positives and government continuously, you know, pursuing this path of pushing manufacturing. So I think all this is also giving certain comfort to the market. Plus in reverse, if you look all around the world, everywhere there is uncertainty. Whether you go to Europe, whether you look at Israel, Hamas, Ukraine, Russia, nothing seems to be, you know, coming to an end or reaching some kind of a finality. Plus right. US itself.
Right. I think the only certainty is uncertainty, like as a paradox, so to say. So, you know, again, you earlier spoke about the GDP figures that had come out. And I think a lot of focus is from a lot of analysts on, you know, third largest, fourth largest. What is our aim? Where are we going? This trillion, that. I think we could, you know, just get your views on. You said the rate of increase, the fastest growing. And I think the rate is very much more critical, irrespective of the final size that we, you know, that is all, a lot of it is positioning and posturing. But it's the rate which is very encouraging, because that is what indicates real time what is really helping the country grow.
Yes, and Gaurav, why that rate is important? Why? Because if you look at other emerging economies, even developed economies, everywhere you're seeing a shrinking economy. So in that backdrop, India continues to grow. And had it not been the first two quarters we did bad, we would have been easily, I think, 7+. So and it is only because of these global uncertainties, which are, you know, kind of reflecting on us, you know, all these kind of trade barriers which are being built, you know, post-World War, in the entire thing, the world order is changing. Everybody is building walls. There is a clamor for no protectionism, make in India, it's make in America, make America great again. So all those kind of things are also, plus seen in the entire world universe is all one. So if there are issues in US, obviously our own exports get infected. If there are issues in Europe, so that is why now we are also at the same time negotiating free trade agreement. We have just done one with UK. So, but yes, all these kind of measures, trade agreements, they take some long time first to reach an agreement and then to kind of implement it, or that agreements to take effect or yielding results. So I think all those, so we are kind of having a multi-pronged approach, you know, having our, you know, sustaining our own growth, internal domestic factors, you know, keeping things right, and at the same time also negotiating with the world.
Right.
और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया में जापान के निकेई को छोड़कर अधिकांश शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में पिछले सत्र के मुकाबले 1.47% की बढ़त दर्ज की गई. हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में बढ़त 1.06% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में बढ़त 0.23% की रही. सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.35% बढ़ा. दूसरी ओर जापान में निकेई में 0.51% की गिरावट दिखाई दी. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार आज दिन में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.32%, जर्मनी के डैक्स में 0.29% और लंदन के फुटसी में 0.21% की तेजी चल रही थी. सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे, कल जैसी हालत है एशिया के ज्यादातर बाजारों में, केवल जापान ही एक एक्सेप्शन है, और यूरोप के सारे बाजार भी कल से लगातार बढ़त की ओर है, तो यहां पर तो आप मानेंगे कि ग्लोबल फैक्टर्स कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी उस अनसर्टेनिटी के बाद भी सारे बाजारों ने उस अनसर्टेनिटी को डिस्काउंट किया।
नहीं अमरीश, मुझे क्या लगता है कि चाहे वो हिंदुस्तान के बाजार हों या दुनिया के, आप चाहे कॉस्पी की बात कर रहे हैं या आप निकी की बात करें, किसी भी बाजार में या डाउ जोन्स हो, यूएस डाउ हो, मुझे लगता है कि ब्रॉडली रेंज बाउंड है। वो एक रेंज में आपको मिलेंगे, तो किसी दिन आपको दिखेगा 2-3 दिन का एक अपसाइड दिखेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मुझे लगता है अभी टिल देर इज नो, एक होता ना जिसको बोलते हैं कि एक कोई फैक्टर जहां से मार्केट को कुछ वो मिले कि पॉजिटिव क्यू की हाँ अब वी आर मूविंग इन दिस सर्टेन डायरेक्शन। तो मुझे लगता है अभी देर इज लैक ऑफ उस तरह का कोई सर्टेन क्यू नहीं मिला।
तो अभी उसका इंतजार करने की जरूरत है, कुछ ऐसा हो जो पॉजिटिव हो।
हाँ निश्चित तौर पे, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया में और कहीं सर्टेनिटी नहीं है, कहीं मतलब वो दे आर नॉट रीचिंग एनी कंक्लूजन और फाइनलिटी।
राइट, सो यू नो एज वी हेडलाइंड ऑल्सो दैट बारिंग द निके, एनी रीजंस व्हाई द निके डिड नॉट राइज?
नो, आई थिंक इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट टर्म इमीडिएट रीजंस इन जापान। बट टू I think one factor which I would say, Gaurav, is not to look at markets on a daily basis. If you look at, they have moved from a certain band, which we were about 2 months back or 3 months back, where there was uncertainty, broad uncertainty through the world, when Trump had just come in, tariffs were being announced. So I think also world has kind of discounted Trump in the sense that, yes, he does announce certain, you know, sharp reactions are there from his side, but then he gets back.
There's volatility there also.
Yeah, and he's not able to stand up to his calls.
Right. We take a look at the U.S. markets now. U.S. stocks turned in a mixed performance on Wednesday after private sector hiring in the U.S. hit its lowest level in over 2 years, and investors continued to wait for some clarity on the trade front. A report from payrolls processing firm ADP showed that private sector jobs increased by just 37,000 in May, less than the revised April reading of 60,000 and below the consensus forecast of 110,000. Nasdaq Composite closed 0.32% up at 19,460, and S&P 500 closed flat, up 0.01% at 5,971. However, the Dow Jones Industrial Average shed 0.22% to settle at 42,428. Drawing your attention to job creation, and I think, make America great again and make in America, I think somewhere where the world was becoming more global, and here we, as you said, raising walls and bringing in production back, aim was also to create jobs. And there is a gestation period. How long do you think, because job creation is very, very critical in any country, and America is also going to be struggling with actual job creation maybe in another 2-3 years till the gestation period is over?
Yes, I think because US, whatever, till now what we have seen, Mr. Trump is just raising the bars for uncertainty. He's now telling Apple, he's telling Samsung, you have to come back to the country. If you produce in India, we are going to put tariffs. So, and the problem is that on a daily basis, some new issue he's raising up. Like today, he's banned people from 10 countries to enter US. Yesterday, there was a hike on steel tariffs. Plus, look at two more things. The tax bill which he has brought in, there is already one of his closest associates has
disassociated himself.
Yeah, he's left him, which was, I expected that because, people with two extreme views, I don't think they last very long together. So all that is also, plus the Moody's downgrade, they're already $38 trillion in debt.
Yes.
So, and the bill which you're introducing means you're cutting taxes, means you will raise more debt. So, and at the same time, you're also disturbing the world order. You're putting tariff barriers. So all this will only increase the uncertainty. And if they get a good trade deal with us, like we're getting to hear that we will start importing oil from US, oil and gas from them, or start buying some defense equipment. So how soon all that will start yielding results for US itself also? Because here, if you start putting tariff barriers, obviously your own inflation, your own unemployment would rise. And that is the concern of US Fed for now. That is how they've been also, waiting and watching, waiting for more data, more clarity. So I think what you're saying is right.
Right.
और चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहल ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे, 11 वर्ष पूरे हुए एनडीए सरकार के, और जैसा मोदी जी ने खुद ही उल्लेख किया है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर, इतने सारे हमारी उपलब्धियां हैं इन 11 वर्षों में।
हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है सरकार की उपलब्धि, और मुझे लगता है जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से उनका जो फोकस था वो ये था कि किसी न किसी तरह से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं जिससे कहीं ना कहीं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के जो रेखा है उससे ऊपर ला सकें, उसको उबार सकें। और शायद उसी के लिए जो सबसे बड़ी योजना मुझे याद आती, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, जनधन योजना थी कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के दुनिया देश में सबके, क्योंकि पहले बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल काम था, तो एक वो अभियान, एक उसको जो है उसको एक मूवमेंट की तरह चलाया गया, जनधन के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। उसी तरह लोग आज भी हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, वो लकड़ी का इस्तेमाल करते थे ईंधन के रूप में, तो उससे उनको दूर, उनको उस सुविधा को, उससे असुविधा से हटाने के लिए उनको जो है हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्रदान किया और एक सब्सिडाइज रेट पे कनेक्शन फ्री दिया, कुछ 3-4 सिलेंडर्स जो है साल में मुफ्त दिए गए, तो उससे एक लोगों को सपोर्ट मिला। और एक जो लास्ट अभी बड़ा प्रोग्राम जो आया वो है आपका हेल्थ केयर का, आयुष्मान भारत, जिसमें हम 5 लाख तक कैशलेस जो है लोगों को हेल्थ केयर के जो है हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, साथ साथ पीएम आवास रूरल, पीएम आवास अर्बन, तो न केवल लोगों को और घर दे रहे हैं बहुत ही रियायती दरों पे, उनको जो है ऋण ले रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है, आवास योजना रूरल एरियाज में, तो ज्यादातर पैसा सरकार ही दे रही है।
In another story, Prime Minister Narendra Modi will dedicate the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link USBRL project to the nation during his visit to Jammu and Kashmir tomorrow. The 272-kilometer USBRL project has been constructed at a cost of around 44,000 crore rupees. The USBRL project is a fully electrified section and comprises 36 tunnels and 943 bridges. The Chenab Bridge, the world's highest railway arch bridge and India's first cable-stayed rail bridge, the Anji Bridge, which are a part of the USBRL, will also be inaugurated by the Prime Minister. The project establishes all-weather, seamless rail connectivity between the Kashmir Valley and the rest of the country, aiming to transform regional mobility and driving socio-economic integration. During the visit, the Prime Minister will also flag off 2 Vande Bharat Express trains, one from Sri Mata Vaishno Devi Katra to Srinagar and the other from Srinagar to Katra. Besides, in a major boost to last mile connectivity, especially in border areas, the Prime Minister will lay the foundation stone and inaugurate various road projects. So Siddharth, before this, the story was on last mile delivery, on actually ensuring that the last mile gets the benefits of our progress and growth and development. Social schemes. And now to adding more miles for connectivity. This whole thrust of the government to make sure, and you know, Kashmir is not an easy place to build against all odds. Weather plays, I think, mischief so often. So all this connectivity, using the economic benefits, because, you know, when you build connectivity, the gestation period for economic benefits is very, very small. It translates very fast into benefits. What are some benefits we can be looking at?
See, Gaurav, I think since the government took over, I think the prime focus was infrastructure, whether it was roads, bridges, airports, and leaving all that aside, I think Kashmir itself has been a prime focus for this government. They've been hugely investing, because I think one of the biggest, what we always hear from people saying that Kashmir is in isolation. So not only political, I think government has also taken a lot of economic steps.
Right.
Besides 370, abrogation of 370, these are also things which government has actually done so that, you know, Kashmir gets connected to the entire country in terms of not only politically, economically, एंड एज यू सेड ऑब्वियसली इट विल बूस्ट नॉट ओनली बूस्ट देयर इकोनॉमी, इट विल बूस्ट टूरिज्म इन अ बिग वे. कश्मीर इज अ बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड गेटिंग रेल कनेक्टिविटी, बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ ब्रिजेस ऑन चिनाब, आई थिंक इट इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम.
राइट.
और रिजर्व बैंक ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने की योजना शुरू की है ताकि इन विषयों पर हिंदी लेखनी और शोध को प्रोत्साहन दिया जा सके. इस योजना के अंतर्गत यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर या सेवानिवृत्त प्रोफेसर इन विषयों पर पुस्तकें लिख सकते हैं. विस्तृत जानकारी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
Look at the oil prices. Oil prices edged higher today after falling the previous day. Brent crude was trading 0.42% higher at $65.13 per barrel. WTI crude was 0.3% up at $63.04 per barrel when reports last came in. So, you know, crude oil prices again, and we're seeing volatility and fluctuations expected everywhere. But India is safe from these fluctuations because of our policies?
Yeah, I think, Gaurav, because anything below $70 per barrel is is highly positive for India, and because we are huge importers of oil, and also it translates, I think, if it sustains at this level, something below 70, 65, I think it could be also good news for the consumers.
Right. And any impact on RBI's decision tomorrow, the oil prices?
Obviously, because if oil prices are benign, I think it is a big positive in terms of inflation, the inflationary impact of crude oil. So I think it will also another positive factor for RBI to consider while, you know, announcing a rate cut is, I think, is something which is given.
Right.
और इसके साथ सिद्धार्थ जी, जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे, अगर हमारा जो डील होता है यूएस के साथ, वहां से भी हम अगर क्रूड खरीदेंगे तो उसके बाद हमारे घरेलू बाजार में क्या असर आपको दिखाई देगा?
नहीं अमरीश, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, और अभी जो यूएस में जो शेल गैस है या ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत जो है काफी कम है. तो और दूसरा, आपको और बड़ी बाजार, आपका चॉइस बढ़ती है, तो ऑब्वियसली आप प्राइस भी निगोशिएट बेटर कर सकते हैं, आपके पास और एवेन्यूज खुल जाते हैं, तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा प्लस है.
जी, और चलते हैं सराफा बाजार का हाल जान लेते हैं. सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.33% बढ़कर 98,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 3.83% बढ़कर 1,05,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.74% बढ़कर 97,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. सिद्धार्थ जी, चांदी के मूल्यों को हम देखें, जिस तरह से का आपको रुख दिखाई दे रहा है, क्या कारण है कि चांदी में इस तरह की तेजी है?
नहीं, चांदी में तेजी के दो कारण है. बेसिकली देखिए, पहले तो चांदी का एक जो सबसे बड़ा यूज था वो ज्वेलरी के रूप में होती थी, लोग इन्वेस्टमेंट करते थे. बट अभी एक जो बड़ा यूज आ रहा है चांदी का, वो है इंडस्ट्रियल यूज. चाहे आप हेल्थ केयर में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, या आप क्लीन एनर्जी में देखेंगे, चांदी का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है. तो एक बड़ा अट्रैक्शन जो चांदी की कीमतों में जो आप देख रहे हैं बढ़त, वो एक कारण है. दूसरा, जो जहां तक ट्रेडिंग की बात है, अब आप फ्यूचर्स में सिल्वर में ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, तो इस वजह से भी मुझे लगता है, क्योंकि और एक सर्टेन चांदी का जो एक सर्टेन अभी अप्रिसिएशन जो देखेंगे आप पोस्ट कोविड स्पेशली, और जो गोल्ड की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही, तो शायद एक ऑप्शन लोगों के दिमाग में अब चांदी की तरफ भी लोगों का आकर्षण.
सो फॉरवर्ड ट्रेंड्स,
मुझे लगता है कि अगर सोना इस तरह से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर लोगों का रुझान चांदी की तरफ बढ़ेगा. और मतलब, क्योंकि अगर अफोर्डेबिलिटी घटेगी तो ऑब्वियस है. और दूसरा, नॉट ओनली अफोर्डेबिलिटी, दूसरा क्या, अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, अल्टीमेटली एवरीबडी, मतलब यू आर इन्वेस्टिंग, तो इफ यू आर एबल टू मेक मनी इवन इन सिल्वर, एंड सिल्वर वुड गो अप बिकॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स बिग इंडस्ट्रियल यूज.
राइट
जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
आप दोनों को भी धन्यवाद.
एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच. अनदर लुक एट द हेडलाइन बिफोर वी गो. अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यूज इन स्टॉक मार्केट. सेंसेक्स राइजेस बाय 444 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 24,751. बारिंग जापान्स निके, मोस्ट अदर एशियन मार्केट्स क्लोज विद गेन्स एंड ऑयल प्राइसेस एज हायर आफ्टर फॉलिंग इन द प्रीवियस सेशन. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज प्रोग्राम. नमस्कार. Market Sarkar.